श्री गुणों के गान में विवर्धमान महान जिंद चिरे हमारे। समय सार परमागम आश्रव अधिकार गाथा नंबर 179-180। जय पुरुषेणाहारो गहदो पर्णमदिशो अनेयभिहम् मंस बसारुदरादि भावे उज्जग्विषम् गतो। जिस तरह देखो अंत में निष्कर्ष दे रहे हैं, ये सदकार की अंतिम गाथाएं हैं। और अभी तक ये बताया था कि ज्ञानी अबंध क्यों है, कैसे है, उसे आश्रव और बंध क्यों नहीं है। अब चूंकि आश्रव अधिकार है, उसका समापन कर रहे हैं, तो कहते आश्रव आखिर होता कैसे है, उसका निष्कर्ष में वो गाथाएं हैं। और जो कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन पेट में जाता है और उदराग्नि के संयोग से, पेट में एक जठराग्नि होती है उसके संयोग से वो मांस खून हड्डी जो जो बनना है, जो जो तत्व उसमें हैं और जिससे शरीर के अंग को जिन जिन तत्वों की जरूरत है वो उन अंगों में तत्वों में ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। उदराग्नि के संयोग से वे नए ज्ञानावरणादि कर्म मान कर्मान बरणाएं कर्म रूप से परिणत होकर और वहाँ पुराना जो कर्म शरीर है ना वहाँ उससे जाके बन जाती हैं। तो ये ऐसा क्यों कहा कि वो भोजन, अब एक ही भोजन में ऐसी चीज भी है कैल्शियम है जिसे की जरूरत हड्डी को है, उसमें जो जो खून को कोई चीज की खून में कमी हो, लोहा तो लोहे को खून की जरूरत है, लोहा खून में पहुंच जाएगा, वो सब पहुंच जाता है। ये कहना चाहते हैं कि जो वो कर्म बनते हैं वो कर्म अंदर भी आठ ही कर्म है, ज्ञाना बननी है, दर्शना बननी है, 148 प्रकृतियां हैं और इनमें भी आकर एक लोट का लोट आता है तो फिर उसे बंटवारा होता है, वो जिसे प्रगति बंद कहते हैं। तो कहते हैं इसमें जो ज्ञानावरण के लायक वर्गणाएं हैं वो जाके ज्ञानावरणी कर्म में मिल जाती हैं। ये भी आप शायद नहीं जानते होंगे कि कर्मान वर्गणाएं भी अंतर्गत भी भेद अलग है, ज्ञानावरणी की अलग है, दर्शनावरणी की अलग है, वो बहुत डिटेल है। और उस लोट में भी सब आती हैं और वो ज्ञानावरण की जो कारमान बजना है वो ज्ञानावरण में अपने आप पहुंच जाती हैं। जैसे उसमें वो शरीर में हड्डी है तो हड्डी कैल्शियम की बनी हुई है और उसे कम पड़ जाए तो और कैल्शियम की जरूरत है, तो भोजन में जो कैल्शियम होता है वो हड्डी आकर्षित कर लेती है उसे और वो हड्डी को आकर्षित होता है और वो हड्डी में पहुंच जाता है। ऐसे वो कर्म पहुंच जाते हैं अपने आप। हमारा तो कुछ योगदान उसमें है नहीं, यह तुम्हारा उदराग्नि के संयोग से, जैसा वो भोजन में सब चीजें हैं और जो जठराग्नि है ये अपनी शास्त्रीय भाषा है पुरानी आयुर्वेद की। अब आजकल तो ऐसा मानते हैं डॉक्टर लोग कि हमारा जो आमाशय में भोजन जाता है ना स्टमक में, तो वहां पर जाके बहुत सी ग्लैंड्स होती हैं, वो अपना अपना रस छोड़ती हैं, खासकर एसिड होता है, एसिड जैसे एसिडिटी बोलते हैं ना, वो एसिड जाकर उससे मिलता है, उससे भोजन को तोड़ता है वो, दूध को कैसे तोड़ता है, एकदम छेना बना देता है दूध का, है ना। ऐसे ही सब अनाजों को, इनको सबको, वो जो जाते हैं ना हमारे कई तरह के, वो उसे तोड़ करके फिर एकदम ऐसा एक लोट बना देते हैं कि जिसमें हर चीजें, हर अंग अपना अपना तरीके से ले सकता है। तो जठराग्नि के संयोग से उसे जठराग्नि कहते हैं अरविंद। तो ऐसे ही कहते हैं कि ये ज्ञानावरणी आदि कर्म नए, पुराने ज्ञानावरण आदि कर्मों से बनते हैं, लेकिन क्या देखो दूसरा कर्म, नए पर ज्ञानी के नए पर हीना जीवा, नए से रहित जो ज्ञानी जीव हैं उनके, ये कोई जठराग्नि के संयोग के लिए उन्होंने बताया कि जो जीव हैं, जो शुद्ध नए से च्युत हो गए हैं, ऐसे जो जीव हैं, तो उनके भावों के निमित्त से, भाव माने मिथ्यात्व और अनंतानंदी कषाएं, इनके निमित्त से जठराग्नि की जगह ये हैं, और वो नए पुराने कर्म नए कर्मों से बन जाते हैं। जो हमारे पास भोजन जाता है वो जठराग्नि से नहीं बनता है, जो पुराने उसके भाई बंधु हैं, कैल्शियम है तो कैल्शियम से, अरे हड्डी से, वो उससे बनता है, बनता तो उससे है, लेकिन जठराग्नि उसमें निमित्त है। ऐसे आत्मा के लिए परिणाम उसमें निमित्त है। अब वो कहते हैं पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से वो नए कर्म बनते हैं। अब उन निमित्त कह दिया ना उसे, तो कहते हैं काय के निमित्त, उनसे तो बंद रहे ये जाकर के, तो कहते हैं कि ये और अपने राग के बिना बनते नहीं है, तो इसके तो ये कहते हैं कि उन्हें निमित्त बने तो उनके निमित्त बनने के निमित्त ये हैं मोहराग देश के परिणाम, निमित्त तत्व के निमित्त जो शुरू शुरू में बात की थी ना, तो वही ये बात आ गई। बाकी देश में आप पढ़ लेना, ज्यादा माल है नहीं, इतनी सी बात है। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपकी इस किताब में लिखी हैं, निकालो आप पेज नंबर 70। लिखा था कि मिथ्यात्व से, इसका मतलब मिथ्यात्व की भूमिका में जो प्रश्न है यहाँ इस गाथा में, तो ऐसा लिखा है कि ज्ञानी जीवों के पूर्वबद्ध द्रव्य प्रत्यय माने द्रव्य आश्रम अनेक प्रकार के कर्म बांधते हैं, यानी वो पुराने द्रव्य हैं, उनका उदय नए कर्म बांधता है। क्लियर बात लिखी है। अब तुम जबरदस्ती आत्मा को बीच में लगा रहे हो, कह रहे हैं है ना, और आप कह रहे हैं कि आत्मा मिथ्यात्व की भूमिका की बात है, अज्ञान अवस्था की बात है, इसका क्या कारण है, यानी आप ये मिथ्यात्व की बात क्यों कर रहे हो यहाँ। तो कर्म पुराने कर्म नए कर्मों को बांधते हैं, झगड़ा खत्म। यद्यपि गाथा में राणिष्य पद पड़ा है, देखो अब गाथा में राणिष्य मैंने ज्ञानी के, अब तुम कह रहे मिथ्यात्व की माना अज्ञानी की बात है, ज्ञानी की बात है ना, अज्ञानी की बात नहीं है ना, लेकिन तथापि साथ में नए परहीना भी लिखा है। अब देख कैसे हो गई कि ज्ञानी तो नए से परहीन होता नहीं है, और ये नए हैं वो शुद्ध नए से परहीन है, शुद्ध नए की बात चल रही थी, तो ज्ञानी तो शुद्ध नए वाला होता है, और यहां तुमने नए अज्ञानी के नए ही नहीं होते ना, नया भास होते हैं, तो नए परहीना लिखा है, यहां ज्ञानी भी लिखा है और नए परहीना भी लिखा है, ये झगड़े की जड़ है जो अब खास समझने का है। तो वो ये कह रहे हैं, अब यहां पर एक दिन मैंने बताया था कि ज्ञानी तीन तरह के होते हैं, याद है किसी को, हाथ उठाओ, बहुत कम उठ रहे, कोई बात नहीं है, मैं बताता हूं, अपने अपने ज्ञान से देख लेना कि एक तो जिनमें ज्ञान है वे ज्ञानी, निगोदिया भी ज्ञानी है क्योंकि वो ज्ञान है, और पुद्गल है उसमें ज्ञान नहीं है इसलिए वो अज्ञानी है, एक ज्ञानी तो जी, और दूसरा जैसे सम्य दर्शन सम्य ज्ञान है वो ज्ञानी है, और तीसरा केवल ज्ञानी ज्ञानी, तो दूसरा सम्य दृष्टि ज्ञानी और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, और केवल ज्ञानी ज्ञानी और 12वें अनुष्ठान तक के अज्ञानी, आचार्य भी लिखते हैं ना कि मैं ज्यादा नहीं समझता हूँ अज्ञान की वजह, बस यदि कोई गलती हो जाए तो सुधार करके पढ़ना है ना। तो वे कौन सा अज्ञान की बात करते हैं, वो जो केवल ज्ञान वाला ज्ञान है वो मेरे को नहीं है। अब मैं करुणा नियोग की बातें लिख रहा हूँ शास्त्रों के आधार पर, अब कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हो ही सकती है, तो उसकी बात करते हैं क्या। अभी तो बात आई तो अपने को अज्ञानी लिख रहा है, अज्ञानी लिख रहा है, अज्ञानी लिख रहा है, पूरी अज्ञान। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर ज्ञानी माने वो अज्ञानी है जो अनादि से लेकर अनंत काल तक जिसमें ज्ञान है वो ज्ञानी, और जिसमें ज्ञान नहीं है ऐसा धर्म अधर्म आकाश और काल अज्ञानी, ये लेना। ये कहते हैं राणिष्ठकार से लेना, क्योंकि शुद्ध परिहीना नए से परिहीन लिखा है, क्योंकि दूसरे नंबर का ज्ञानी और तीसरे नंबर का ज्ञानी वो तो नए से परिहीन होते नहीं है। एक बात समझ नहीं ना, अतः यहाँ ज्ञानी शब्द का अर्थ सामान्य जीव ही लेना। ज्ञानी शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, यहाँ दो लिखे मैंने, तीन बता दिए आपको, जिसमें सम्यक ज्ञान हो वे ज्ञानी, एक अर्थ तो यह है और दूसरा यह है कि जिसमें ज्ञान हो चेतनता हो वह ज्ञानी जीव। यद्यपि यहाँ ज्ञानी का अर्थ सम्यक ज्ञानी नहीं सामान्य ज्ञानी अर्थात जीव लिया जा सकता है, तथापि ऐसा जीव लेना अभीष्ट है। अभी नई बात कि जो पहले सम्यक ज्ञानी था और फिर मिथ्या ज्ञानी लेना है, वो अनादि वाला नहीं लेना। क्यों छाबड़ा जी क्यों, बोलना मत बस, मैं वैसे आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, बुलवाना होगा तो विद्यार्थियों से बुलवा लूंगा। ये वो क्यों लेना कि जो पहले ज्ञानी था और अब अज्ञानी हुआ है, ये इसमें से कहीं से निकलता है ना, गाथा में से निकलता है कहीं। शुद्ध नय से जो च्युत हुए है ना, ये लिखा शुद्ध नय से मैंने पहले पहुंच गए थे पर वहां से गिरे, ये गिरने वाला जीव लेना, तो चढ़ा होगा वो तो गिरेगा ना, शुद्ध नय से परहीन, नय से परहीन पहले नये वाला था और बाद में गिरा है, देखो इसमें लिखा है सब। कहां पढ़ रहे थे अपन, जब जब यहां अज्ञानी जीव ही अपेक्षित है तो फिर ज्ञानी पद का प्रयोग ही क्यों किया गया जो हमें भ्रम पैदा होता है ना। कहते क्योंकि यहां अज्ञानी लेना है, क्योंकि यहां ऐसा अज्ञानी लेना है जो पहले ज्ञानी था और बाद में शुद्ध नय से चित होकर अज्ञानी हुआ है ना। आचार्य जयसेन की तात्पर्यवृत्ति टीका में एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यहां ज्ञानी शब्द का अर्थ चैतन्य लक्षण वाला अज्ञानी जीव लेना, ज्ञानी जीव नहीं। इन गाथाओं वो तो हो गया बात, अब देखो अपने तीर्थों से पाठ कर रहे थे ना, वो जिसमें इस कलश का भी अपन पाठ कर ही रहे थे, फिर ये बात ख्याल में आ रही थी क्या अपन को, इन गाथाओं का भी पाठ कर रहे थे, नहीं आ रही थी ना। अब द्वारा अब पाठ करो तो आनी चाहिए, फिर मतलब समझ गए ना, तब तो हम इसकी स्टडी कहलाएगी, तब तो अध्ययन कहलाएगा और तब वो पाठ करने का सही लाभ होगा। हम इसलिए पाठ करवाते हैं जब 10 दिन तक लगातार आपने पाठ किया तो ना सही अकलंक निकलेंगे, लेकिन 10 दफे पाठ करने से तो कुछ न कुछ रह ही जाएगा ना, याद नहीं होगी तो नहीं सही, लेकिन ये कहीं परिचित हैं, क्यों ये हमने पहले गाथाएं पढ़ी हैं, ऐसा तो लगेगा ही ना, लगना चाहिए ना, अपने साथ होता है ना, कैसा मुझे पहचान है, कि ध्यान तो नहीं आ रहा लेकिन ऐसा जरूर लग रहा है कहीं देखा है आपको, क्यों पहचान के कितनी प्रकार हैं, एक तो नाम सहित परिचय सहित पूरा बता देना और आप विद्वान हैं और आप इसके विशेषज्ञ हैं और जे हैं और इतने संपन्न हैं, सारा परिचय जानना, इसको भी जानना बोलते हैं, क्यों और अकेला नाम जानना, इसको भी जानना बोलते हो, नाम नहीं जानना अकेला भाई फेस जानना, इसको भी जानना बोलते हैं, क्यों और कहीं देखा है इसको भी जानना बोलते हैं, नहीं जान ये सब जानने के भेद है, नहीं जानने के भेद नहीं है। तो इस तरह से ये गाथाएं यहां हुई हैं और अब ये पूरे अधिकार का कलस में बात आदि देते हैं, मैन ये अधिकार समाप्त हो गया, तो दो अंत के कलश रह जाएंगे तो नहीं तो अभी कोशिश करते हैं पूरे कर दें और कल से फिर अपन समर अधिकार चलाएं। इदि मे वात्र तात्पर्यम हि यः सुद्दिन यो नहीं, इस कथन का सारे यह स्पष्ट है, बोलो उस वो संस्कृत का छंद पढ़ो, उसका अर्थ गद्य में भी पढ़ लो और फिर पद्य को पढ़ो, क्यों ऊपर तो सिर्फ इतना ही है शुद्ध नए त्याग नहीं है, इसका ये तात्पर्य है कि शुद्ध नए त्याग नहीं है। यहां पर ने दो पंक्तियों में लिखा कि शुद्ध नए उपादेय है और इसके द्वारा निरूपित जो भगवान आत्मा है वो ध्येय है। अब ये सब भर्ती का है, लेकिन भर्ती का मतलब नकली माल नहीं है, धरती में भी क्या डालना एक सवाल है ना। एक लेन बची थी अपने पास संजीव, मूल छंद में वो बात नहीं है, ऊपर दो लेन का छंद है, अपन ने चार लेन का छंद चुना तो भर्ती तो उसमें आएगी, लेकिन जो शुद्ध नए त्यागने योग्य नहीं है इसको इन दो पंक्तियों में इतना कर दिया कि जैसे आपकी में त्यागने योग नहीं है का अर्थ क्या है ना। इस कथन का सारे है कि शुद्ध नए उपादेय है, आत्मा ही ध्येय। अब नीचे की पंक्ति, क्योंकि इसके यहां भी एक लाइन का अर्थ दो लाइन में किया है, तो यहां भी भर्ती के शब्द तो होंगे ना। कौन सा शब्द भर्ती का है बताओ, सोचो, लगाओ फटाफट, देखो तुम संस्कृत वाले हो ना, मूल में देखो और इसमें देखो, जो संस्कृत नहीं जानते हैं वो हिंदी में जो अर्थ लिखा है ना गद्य में वो पढ़ो और इसे पढ़ो तो मालूम पड़ जाएगा उसमें क्या है। थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, सीखना चाहिए। शांति और अशांति, शांति अशांति इसमें नहीं है, है ना। देखो इसमें क्या है, बंध और अबंध है, इसके त्याग से बंध है और अत्याग से अबंध है, ये है। इसमें शांति है और अशांति है नहीं है, तो अपन ने भर्ती के शब्दों में शांति और अशांति जोड़ी, ठीक है ना। इससे बढ़िया कुछ जोड़ा जा सकता है क्यों, तबीयत खिलती है ना इससे क्यों। इस कथन का सार यह कि शुद्ध नए उपादेय है, क्योंकि इसके त्याग से ही मुझे तो ये छंद इतने अच्छे लगते हैं कि जब ये आ जाते हैं तो आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती। जब मैं यहां से कहीं बाहर जाता हूं अपनी गाड़ी से, और गाड़ी से जाता भी इसी लोभ में हूं कि हम यहां से शुरू करते हैं, गाड़ी चलती बाद में है स्मारक के बाउंड्री के बाहर, और पहले हमारी एक कैसेट शुरू हो जाती है, और जब बाउंड्री के अंदर वहां घुस जाते हैं जहां जाते हैं उसके बाद ये बंद होती है। एक सेकंड को भी हम बंद नहीं करते, पर कदाचित मैं कर भी दूं तो भाई तो किसी कीमत पर बंद नहीं करने दे, किसी कीमत पर। पर सबसे पहले मैं कहता हूं कि समय सार कलश पर ध्यान मार लगाओ, मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। इतना माल है इसमें, इतना माल है अमृतचंद का सीधा, ख्याल में आई ना, कि उससे आपको बहुत आपकी उपयोग में निर्मलता होती है और इसी वजह से छंद भी आपको याद रहते हैं। अब इसके अर्थ करने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं। देखो बनारसी दास जी ने भी दो ही लेन से काम चलाया, लेकिन वो भी बहुत मारमेट है। यह निचूर इस ग्रंथ को क्या फर्क है, बोलो अपने अपने पदानुवाद में इसमें क्या फर्क है, देखो क्यों कोई फर्क नहीं है ना। तो फर्क जिसको दिख रहा हो वो हाथ उठाए। अरे बहुत बड़ा फर्क है, हमने तो ये लिखा था इस कथन का सार यह है कि जो अभी प्रकरण चल रहा है अश्रव अधिकार का, इसका ये सार है। और ये तो बनारसी दास जी तो कहते हैं यह निचोड़ इस ग्रंथ का, ये तो कहते पूरे ग्रंथ का सारे है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया, खोला इस तरह सोच माथा माथा मारा करे कुछ, निकालो तो गलती कहाँ गलती है कुछ, वो गलती में भी कुछ मजा है कि नहीं है, वो गलती भी की है, तो क्यों की है। अब यहां कहावत है ना कि बनिया कहीं झुका है तो वैसे ही नहीं झुका है, कहीं गिरा वहां कुछ ना कुछ मार होगा, समझ में आया ना, वो नहीं तो झुक नहीं सकता है। तो यदि उसमें कहीं ना कुछ परिवर्तन है तो उसमें भी कहीं कुछ माल होगा, उस माल को खोजने की कोशिश करो, बनिया हो ना। इसलिए देखो ये निचोड़ इस ग्रंथ का, ये तो पहली गाथा से 415 गाथा तक का निचोड़ बता रहे। तो ये बनारसी दास के सामने तो अपना पद्यानुवाद था नहीं, इसलिए उनसे तो अपन कोई शिकायत नहीं कर सकते। अपने अपने सामने तो बनारसी दास का ये पद्यानुवाद मौजूद था ना, क्यों तो यदि ये इतना अच्छा है तो अपन को इतना अच्छा पसंद है तो अपन ने भी ये क्यों लिखा कि इस कथन का, वहां भी कुछ दिक्कत नहीं है, इस ग्रंथ का है सारे की शोध नए उपाधि है। वहां भी इस शब्दों में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती, कथन की जगह ग्रंथ लिखा जा सकता था बहुत आसानी से, मेरा मतलब ये है। क्यों क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि अपन आश्रव अधिकार के समापन का कलश है, इसलिए उसकी बात करना चाहते हैं। और बनारसी दास को तो मैंने पहले ही बता दिया कि वे तो क्या बोले फ्रीलांसर है ना, वो तो कहां को गेंद मारना कैसे मारना, तो ऐसी गेंद आए तो ऐसी मारना, ऐसी आए तो ऐसी मारना, ये साधारण उनका नाम काम है। किनका, बॉलर बैट्समैन का। और कुछ फ्रीलांसर होते हैं, कोई आए कैसी आए कहीं को भी मार दी, वो साधारण नहीं, मतलब मूर्ख नहीं होते ख्याल में आई ना, वो तो कहीं भी जाएगी बाउंड्री पार करेगी, वो तो समय सार में ऐसे रम जाते थे। तो उन्होंने इसमें ये देखा इदमे वात तात्पर्यम, इदमे वात तात्पर्यम संस्कृत तो उन्होंने देखी नहीं। अभी उनका देखो पांडे राजमल जी की, तो आपको ख्याल में आएगा, सुमित्र जी बैठे हैं, फिर मैं एक विकल्प आया था मैं आपको बता देता हूँ, अकेले में बताना चाहिए, फिर भी अभी मेरे पहले याद रही कि नहीं रही। इन्हें कहा था ना कि इसमें छह का माल है, छह ग्रंथ का माल है, किसी दूसरे ने कहा था, वीरेन जी ने कहा था, वीरेन जी चले गए, अच्छा अच्छा, लेकिन मैं कहता हूँ छह का नहीं सात का है, सातवां कौन है, पांडे राजमल जी। देखो मुझे मतलब की बात याद रही, नाम भले ही याद नहीं रहा कि किसने कहा था। मैं कोशिश करता हूँ सबके ही सुनता रहता हूँ, जितना मुझे कोई जरूरत पड़ती है तो मैंने अपने ऑफिस के कमरे में जहाँ बैठता हूँ उसमें भी स्पीकर लगा रखा है और अपने बेडरूम में भी स्पीकर लगा रखा है, तो मैं दोनों जगह चालू ही रखता हूँ, बंद करता ही नहीं हूँ, तो सुनता रहता हूँ। तो मुझे उस वक्त विकल्प आया था कि भाई ये बांदे राजमल जी भी इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि बनारसी दास तो उन पर ही डिपेंड करते हैं। हाँ सहजन एक आध जगह लिया है, कहाँ लिया है आप बता सकता है कोई? हाथ उठाओ, कहाँ लिया है? सहजानंद जी का, सहजानंद जी मैंने मनोहर लाल जी बरनी का, वो इसलिए ये एक उनमें ही मिला वो मुझे और किसी में नहीं मिला, इसलिए पूरी 415 गाथाओं का अनुशीलन लिखा और हर गाथा में भी उनका मैंने देखा है, लेकिन और कोई चीज मुझे नहीं लगी कि मैं उसे कोट करूं, लेकिन वो चीज अन्यत्र कहीं नहीं थी। बताओ क्या है? चौथी पांचवी यही गाथाओं में है, है? हाँ गाथवी एक कौन सा शब्द है ये मैं बताता हूँ, एक पहली दूसरी तीसरी गाथा बोलो ना तो उसमें आता है, पहली दूसरी तीसरी में भी है, वो कौन से लिखा है जो मैंने लिखा है उनका कूट करके, अभी मेरे दिमाग में अभी नहीं है। जैसे कौन सा आत्मा है और उस आत्मा का अर्थ मैंने वो किया है, वो उसकी जगह दूसरी जगह नहीं था। शुरू की गाथाओं में ही है जी, 13-14 में बता रहे हैं। अब वो तो हो गई, लेकिन दूसरा जो शब्द है जो दूसरी जगह नहीं है वो है, एक बहुत बढ़िया शब्द है उनने जो किया है, बता दूंगा कभी। वो उसका मैंने पहले कोट किया है, अब ये पहला भाग है नहीं। यहाँ एक बहुत बढ़िया शब्द है उन्होंने जो मूल आचार्य की टीका में है, तो उसका जो उन्होंने अर्थ किया है वो बहुत अच्छा मार्मिक अर्थ है। अब देखो अपने पास समय है, अभी 20 मिनट है मेरे ख्याल से, है ना? तो अपने दोनों कलश और पूरे करते हैं जिसे कल अपन संबद अधिकार पे पहुंच जाए। वीरोदार महिन में अनादि निधने बोधे निवागनम धृति देखो वो जो शब्द है उसमें अंतिम शब्द है पुरुष, जो उनने जो अर्थ किया है ना उसमें पुरुष शब्द है, आगे एक चार अक्षर का और है उनका बता रहे मनोहर लाल का। देखो ये तो अब यहाँ ये कौन सा ज्ञान है? धीर और उदार, धीर और उदार है महिमा जिसकी। ये धीर उदार का तो अर्थ मैंने पहले लिखा है। देखो नायक चार तरह के होते हैं, नायक समझते किसे बोलते हैं? हीरो, हीरो जैसे आपके सिनेमा में हीरो होते हैं, हीरोइन होती हैं, ऐसे महाकाव्यों में नायक और नायिका होते हैं। जो भी ये महाकाव्य लिखे जाते हैं तो उनमें चार नायक होते हैं, नायक चार प्रकार के होते हैं, धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। क्या समझ रहे हैं ना? इन चारों में धीर शब्द तो लगे ही लगा है और दूसरा अक्षर बदल गया, तो धीर का माने धैर्यशाली, धैर्यशाली माने सहन करने की क्षमता, वीर माने आक्रमण करने की क्षमता। बोलते धीर वीर। अब कोई आदमी लड़ता है, जैसे मान लीजिए मुक्केबाज है, तो वो जो मुक्के मारता है सामने वाले को, उसके कारण उसे वीर कहते हैं। और फिर सामने वाले के मुक्के खाता है उसे, उसके कारण फिर वो घबराए नहीं, उसे धीर बोलते हैं। अब ये एक तरह धीरता कम हो तो चले, लेकिन धीरता के बिना लड़ाई में नहीं उतर सकता। क्यों, खड़ा कैसे रहेगा? अरे भाई ऐसा थोड़ी कि हम ही हम पीटेंगे, जिससे पीटेंगे वो सामने वाला भी तो आक्रमण करेगा ना। तो उसे बर्दाश्त करने की क्षमता का नाम है धीरता। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पद्म पुराण में। क्या है, जंगल में राम और लक्ष्मण रहते थे, सीता जी रहती थी, तो भोजन करने की व्यवस्था का कुछ काम करना हो तो शहर में जाना पड़े कहीं आसपास के गांव में, तो वो काम बेचारा कौन था, पीर हो बच्ची बिस्ती कर लक्ष्मण, तो उन्हें जाना पड़ता था सब व्यवस्था करने के लिए नगरों में। और वो वहां नगरों में जाते थे तो उपद्रव भी तो थे, तो कुछ ना कुछ उपद्रव करके आते थे, और हर गांव में जाते थे एक आध शादी करके आ जाते। पढ़ना इस पद्म पुराण। एक गांव में गए तो वहां राज दरबार में पहुंचे, वहां कोई ऐसी लड़की मड़की थी कि जिसने प्रज्ञा कर रखी थी तो मेरे बार सहेगा, जो ऐसा होगा जो मेरे से जीत जाएगा, ऐसा जो कुछ भी होगा डिटेल। फिर वहां जब गए तो उन्होंने ललकारा और सब झुका, तो वहां सारे एकदम ऐसा ललकारा सारी सभा को, एकदम उत्तेजित होगी सभा। राजा ने आज्ञा दे दी कि मार दो सारे सैनिक आगे सामने, उन्हें सामने वालों ने मारा उसे। तो ऐसा लिखा है उसमें पद्म पुराण में कि एक बाण आया तो उसने ऐसा हाथ से पकड़ लिया, दूसरा आया तो इस हाथ से पकड़ लिया, तीसरा आया तो यहां से पकड़ लिया, चौथा आया तो यहां से पकड़ लिया, पांचवा आया तो यहां से पकड़ लिया, छठवां आया तो यहां से दाब लिया। मानों की वर्षा हो रही थी। सातवां आया तो दांतों से दाब लिया। अब नहीं दबता तो क्या, ये देख के ही सब दंग रह गए, इसे कौन लड़ेगा इससे, उसे मारने का मौका ही नहीं आया। और राजा ने अपनी कन्या की शादी कर दी। और वो क्या करते थे, अभी वहां तो साथ में तो ले नहीं जा सकते थे, हैं? तो वो कहते भाई तुम्हें यहीं रहे, और मैं जब पहुंचूंगा 14 वर्ष बाद अयोध्या, तब तुमको ले जाएंगे। फिर बाद में उनने सब इकट्ठी करी। तुम हंसते हो, पढ़ना। ये धीरता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, मेरे नाम समझिए ना, माने सहन करने की क्षमता। तो इसलिए ये चारों प्रकार के नायकों में धीरता तो होनी ही चाहिए। इसलिए धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोधत। अब चार बदल गए, तो धीर और उदार, उदार माने उदारता भी हो और धैर्य भी हो। जीत लिया अपन ने तो जाओ तुम्हें को राज्य तुम्हें संभालना, बस तुम मेरा अन्न स्वीकार करो, ये उदारता का परिणाम है ना, धीरोदात। अब धीर उद्धत, धीर तो है और उद्दंड है, बहुत मतलब समझे ना, इसे मार दो इसे कर दो, नहीं कुछ नहीं, इसको जेल में डाल दो, ये कर दो वो कर दो, वो धीरोधत्त है। आप समझे ना, धीरोदार, जो चक्रवर्ती वगैरह सब धीरोदार होते हैं, ऐसे होते हैं ना, वहीं का सौंपते चले जाते हैं। धीर उद्दंड, क्योंकि रावण को ऐसा माना जाता है धीर और उद्दंड था। और धीर और ललित, धीर है लेकिन शोक मौज शोक वाला है, इसको श्री कृष्ण को माना जाता है। कौन, धीर और ललित, और धीर और प्रशांत किसको माना जाता है, महावीर को। धीर धैर्य भी है और शांत भी है, कितना ही उपसर्ग आए और धैर्य के बिना तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है, लेकिन शांति भंग नहीं होती है। तो समझ गए, ये चार उदाहरणों से आप समझ गए कि चार प्रकार के नायक होते हैं। यहां पर इसका नाम है नाटक समय सार। तो नाटक में नायक तो होता ही होता है, तो यहां नायक कौन है, ज्ञान, ज्ञान नायक है, ज्ञान नायक है, और वो कैसा नायक है, तो धीरो दात्त है। पहले जगह से पढ़ना, पहले कलर से नाम से मंगा धीरो दात्त, धीरो दार, यहाँ दात वहां दात आ गया जैसे जरूरत हुई। यानी ये जो ज्ञान है ये धीरो दार्त नायक है, धीर भी है और ज्ञान में उदारता भी है। क्या? अनंत प्रतिकूल गयों को जानते हुए भी जिसमें चित्त में अशांति नहीं होती। लाखों लोग हमें गालियां दे रहे हैं, भगवान महावीर केवल ज्ञान में नहीं आता होगा, क्यों? हमें तो पूरी महावीर को आज तक गाली देते देखा ही नहीं। अरे भाई वे कहते जगत में एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, और जगत कह रहा कि नहीं करता है करता है करता है, तो यही तो गाली है और क्या गाली होगी। ये कह रहे एक नंबर का झूठा है, वो ऐसा नहीं कह रहे, समझ गए ना। लेकिन कोई चित्त में अशांति नहीं है, उसे कोई घबराहट नहीं है, है? कहने ना, कोई कोशिश नहीं है कि भाई कल से मत कहना आज तो माफ कर देता हूं, समझ गया। तो ये कहते धीरो दात है महिमा जिसकी, ऐसे अनादि निधने निर्वघ्न धृतिम बोधे। अब ये बोध जो शब्द है ज्ञान, अब इसमें हर जगह बड़ी तकलीफ है कि कैसा ज्ञान, कैसा ज्ञान। तो कोई तो केवल ज्ञान लेता है इसका, कोई सम्यक ज्ञान लेता है। अब कहां किसको लेना, तो उसके जो बाकी विशेषण दिए हैं उनसे छांट कर निकालना पड़ता है ना। इसमें लिखा है देखो, इस प्रकार इस कलश में ये तो यानी धीर और उदार महिमा वाले अनादि निधन ज्ञान में स्थिरता करता हुआ, कौन अनादि निधन लिखा भैया, क्यों? तो कौन सा ज्ञान होगा जी? ज्ञान के तीन अर्थ होते हैं, एक त्रिकालीय ध्रुव भगवान आत्मा, एक सम्यक ज्ञान और एक केवल ज्ञान। त्रिकालीय होगा, क्यों बोलती हूँ जल्दी हमारे विद्यार्थियों को बोलने, सुनो शांति, पूरा पढ़ा नहीं इसलिए बहन को ऐसा लग गया, क्यों? इसलिए तो मैंने ये पूछा, देखो पढ़ो अभी इसी में लगा। धीर और उदार महिमा वाले अनादि निधन ज्ञान में स्थिरता करता हुआ ज्ञान, तो कौन अनादि का हुआ है कि वो पर्याय वाला ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ। देखो वो अनादि निधन ज्ञान में तो स्थिरता कर रहा, वो अनादि निधन नहीं है क्या कमल जी, समझ में आ गया क्या? नहीं देखो, इसलिए मैं ये अर्थ पढ़ के सुना रहा हूं। धीर और उदार महिमा वाले अनादि निधन ज्ञान में स्थिरता करता हुआ समस्त कर्मों के समूह को नष्ट करने वाला शुद्ध नय, ये शुद्ध नय वाला ज्ञान है। यहाँ कर्ता शुद्ध नय है, वो तो अनादि निधन आत्मा कर्ता नहीं है, कर्ता जानते हैं, कर्ता कर्म किया एक वाक्य बनता है ना, तो एक कर्ता होता है, तो यहाँ वो शुद्ध नय का कर्ता है, वो है नहीं है ना। शुद्ध नय धर्मात्मा ज्ञानी पुरुषों द्वारा कभी भी छोड़ने योग्य नहीं है। ये तो उस ज्ञान की महिमा बताई है कि उस ज्ञान में ये जो ज्ञान ठहरा है उस ज्ञान की महिमा है, क्योंकि शुद्ध नय में स्थित पुरुष बाहर निकलती हुई अपनी ज्ञान किरणों के समूह को अल्पकाल में ही समेट कर पूर्ण ज्ञान घन पुंज रूप जो भगवान आत्मा एक अचल शांत तेज पुंज को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो ज्ञान जो अंदर में वो जो ज्ञान है त्रिकाली ध्रुव, उसको जो देखने जानने वाला ज्ञान है, ऐसा ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ। आप समझे ना, ये माया ठंड में हिंदी के ठंड में क्लियर है, पढ़ो आप। धीर और उदार महिमा तो गए हैं ज्ञानियों का, आ गया ना ऊपर समझ में, क्लियर आ गया मैंने, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जो मैंने बताया। देखो अनादि अनंत जो उस ज्ञान में स्थिरता करे और कर्मनाशक है जो भाव, वो भाव वो कौन है? शुद्ध नय। सद्ज्ञानियों को वो कभी भी है नहीं है, वो विज्ञान घन जो एक अचल आत्म है वो तो उस ज्ञान का गेय है, है ना। आगे अब दूसरा कलश पढ़ते हैं, खत्म करना है ना, चलो पढ़ो। रागादीनाम जगति बिगमात शरण तो प्यासवाणाम पढ़ दो ना, वे रहे निज में किंतु लोकालोक उनके ज्ञान, वे अपने में रहते हैं लोकालोक उनके ज्ञान में रहता है। कहाँ है ये? सकल गे ज्ञायक तदपी निजानंद रसलीन, वे जो जिनेन्द्र हैं वो निज में रहे, माने निजानंद रसलीन निज में रहे, और सकल गे ज्ञायक माने लोकालोक उनके ज्ञान में है। वे रहे निज में किंतु लोकालोक जिनके ज्ञान में, उनके ज्ञान में लोकालोक रहता है। वे कोई लोकालोक को जानने नहीं जाते हैं, वे तो अपने में मगन रहते हैं, अपने से बाहर निकलते ही नहीं हैं। ऐसे वे भगवान सदा ही उदित परमात्म वस्तु को अंतरंग में देखने वाले पुरुष को रागादि आश्रव भावों का शीघ्र ही सर्व प्रकार से नाश होने से सर्वलोकालोक को जानने वाला अनंतानंत विस्तार को प्राप्त ज्ञान सदा अचल रहता है। प्रकट होने के बाद ज्यों का त्यों मना रहता है, चलायमान नहीं रहता है, उसके समान अन्य कोई न होने से ज्ञान को अतुल कहा जाता है। देखो फिर इसमें हम वो त्रिकाली ध्रुव ले जाएंगे, यहाँ एक केवल ज्ञान की महिमा है, वो शुद्ध ने वाले वो सम्यक ज्ञान की महिमा थी, और यहाँ एक केवल ज्ञान की महिमा है। क्या लिखा ना कि लोकालोक को जानने वाला जो ज्ञान है वो अचल रहता। अचल क्यों कहा? अचल विशेषण तो हम त्रिकाली ध्रुव को लगाते हैं, तो वो कहते हैं कि अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा, बदल करके फिर अल्प ज्ञान रूप नहीं होगा, फिर इस दृष्टि से उसे अचल कहा है। क्या वैसे तो वो केवल ज्ञान भी एक एक समय में बदलता है, तो एक समय पहले का केवल ज्ञान दूसरे समय नहीं रहता है, क्योंकि वो पर्याय है ना, तो पर्याय का स्वभाव तो नष्ट होना है, और दूसरे समय में नया केवल ज्ञान पैदा होता है। मैं इसे ऐसा कहता हूं कि अपना जो ज्ञान है अभी अपने पर्याय में प्रकट एक समय का क्षण मृत्यु ज्ञान है, उसमें इतनी ताकत है, सैनी पंचेंद्रिय है ना अपन, कि उससे आत्मा जाना जा सकता है ना। अब उस ज्ञान को हम सारे जगत को जिसके जानने से कोई लाभ नहीं है और उसके जानने में बर्बाद कर रहे हैं। अब इसमें सरल करना हो तो हमारे पास 100 रुपया है, अब उस 100 रुपये में 2 समय सार खरीदे जा सकते हैं, तो एक आप अपने पास पढ़ने को रखो, एक पत्नी को दे दो आराम से, कितना बड़ा काम हो सकता है क्यों, और दोनों जने बैठ के स्वाध्याय करो। ऐसे 100-100 के नोटों को तुमने कितनी कितनी चीजों के खरीदने में आज तक बर्बाद किया है, सिनेमा देखने गए तो 100 का नोट तो बर्बाद किया ही, तो साथ में 3 घंटे बर्बाद किए। अब और क्या क्या चीजें, पान खा लिया, तो वो जो भी मुझे ज्यादा पता नहीं क्या क्या करते हैं, आप अपना अपना अंदाज लगा लेना। ये इतनी कितनी कीमती संपत्ति है कि उससे क्या खरीदा जा सकता था, पर आपने क्या खरीदा है, कितनी बर्बादी की उसकी आप कल्पना कर। अब ये उदाहरण हुआ सिद्धांत कि जिससे भगवान आत्मा जाना जा सकता है, जिस ज्ञान पर्याय से, उस ज्ञान पर्याय में तूने क्या क्या जाना, क्या समझ गया, कितनी गंदी 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 चीजें जानी, और उस ज्ञान पर्याय को तूने किस तरह से नासमझी से बर्बाद किया। तो हमने कितनी बर्बादी की है इस पर दो आंसू बहाने की जरूरत है कि नहीं है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। क्यों, कितनी ही बर्बादी क्यों न की हो हमने, लेकिन जितना ज्ञान आत्मा को जानने के लिए चाहिए वो भाग्य से अभी हमारे पास बचा है। क्या अरबों की संपत्ति हमारे पास थी, 100 गाड़ियां थी, 10 बंगले थे, ये थे, सब लूट गया, लेकिन भाग्य से एक बंगला, एक गाड़ी, खाने के लिए रोटियों का इंतजाम अभी है, चिंता करने की जरूरत नहीं। कितना बर्बाद किया उसको मत रो, लोगे तो क्या होगा बोलो सनत कुमार जी, कि ये जो तुम्हारे समय में ज्ञान की पर्याय है वर्तमान में, बा उसको जानने में बर्बाद हो जाएगी। जो बर्बाद हुआ वो तो हुआ, लेकिन जो अभी बर्बाद नहीं हुआ और है, जिससे तुम्हारा काम हो सकता है, वो भी उसी को ज्ञान गे बना लेगी। कौन, जो बर्बाद हो गया है नरेंद्र जी, वो उसे जानने में बर्बाद हो रही है। बोलो कौन सी बर्बादी खतरनाक है, जो बर्बाद हो गया वो, जो तो अभी तेरे पास मौजूद है वो, यानी उस आत्मा का ज्ञान कर ले, इतना ज्ञान तेरे पास प्रति समय मौजूद है, कितना बर्बाद हुआ उसे क्यों रोता है, है? अब उसे उपभोग करना, कोई कमी तो आई नहीं है, तू एक ही गाड़ी में बैठता था, एक ही बंगले में रहता था, एक ही बेडरूम में सोता था, एक ही फोन करता था, वो सब मौजूद है। और अमेरिका में तो ये नियम है, आपके पास कितना ही कर्जा हो लेकिन कुड़की भी हो जाए तो ये चीज कोई कुड़की नहीं कर सकता, वो रहने का मकान, बैठने की गाड़ी, जो उसकी दैनिक आवश्यकता की चीजें है ना, उस पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, नियम है कानून से। अरबों का कर्जा हमारा तुम्हारे ऊपर है, और उतने साजों को ले लो, उसमें नहीं ले सकते ज्यादा, और रात के 11 बजे बाद तुम फोन नहीं कर सकते, वो तुमने उसकी नींद खराब कर दी, इस पे तुम पे दावा करेगा, अब वो दावा करोड़ों डॉलर का होगा, तुम उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो हमारे करोड़ों रुपया बाकी है तो करो, दोपहर में करो, तगादा करना है करो, अदालत में जाओ, कुछ भी करो, आप समझ ना, उसकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो तुम्हारे पास है ना कौन सा वो ज्ञान जिससे आत्मा जाना जा सकता और कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वो तुम्हारे पास कानून अधिकार प्राप्त है, काय को रो रहे हो, जो गया उसके लिए, उसे वर्तमान की ज्ञान की संपत्ति उसे क्यों बर्बाद कर रहे हो, वो शुद्ध न, उससे चित हुए तो अशांति है, बंद है, और उसमें रहे तो शांति है और मुक्ति है। बोलो बस खत्म, अब वो चीज तो तुम्हारे पास है, कितना बर्बाद हुआ उसे क्यों रोना। अब क्या करें साहब, अब ये वर्तमान का भी बर्बाद हो गया, बोलो प्रकाशन जी, अब क्या करें, अब तो रोए कि नहीं, रोने की जरूरत नहीं है, कि क्यों नहीं है, कि वो गया तो जाने दो, अगले समय फिर वो नया पैदा होगा। चाल नहीं ना, बैंक में तुम्हारे पैसे जमा है और तुम्हारे लिए 100 रुपया रोज का खर्चा है, तो 100 रुपया रोज तुम्हें नए मिलेंगे, तुम उसे बर्बाद नहीं कर सकते, तुम कितने ही बर्बादी पे उतरो, क्या बाप कह गया कि ये FD है, इसको साला तोड़ा नहीं सकता मेरा बेटा, बस इसका ब्याज इसे दे देना। ये भगवान आत्मा में जो ज्ञान की पर्याय उसे तुम बर्बाद, अगले समय फिर आएगी कि भाभी बर्बाद हो गई, हो जान दे, अगले समय फिर है। लेकिन बहुत अनलिमिटेड काल तक ऐसा ही करता रहेगा तो ये जो सूक्ष्म ज्ञान है ना आत्मा को जानने लायक, वो एक दिन चला जाएगा और 84 लाख उड़ियों में भटकेगा, न मालूम कहाँ कहाँ जाएगा, इसकी कल्पना कर ली। जो बर्बाद हो गया उसके लिए मत रो, जो है उसे संभाल। मरे बेटे की बड़ी बड़ी आंखें सबको दिखती हैं। अरे जो भी छोटी आंखों वाला है पहले उसे संभाल, बड़े बेटे को क्यों रोती है? वो तो मर गया, अब उसे क्या होने वाला है उसके बारे में एक समय भी सोचना समय और शक्ति को बर्बाद करना है। क्यों? जो बचा है उसे संभाल। सभी लोग अपने उपयोग को संभालने के लिए उस तत्काली ध्रुव को संभालें उपयोग के द्वारा और अपना कल्याण करें। फिर भावना जी साथ में।